इन सब को छोड़कर एक रंग अपना लो, सिबगत अल्लाह की, व मन अहसनु मिन अल्लाह की सिबगा, व नहनु लहु आबिदून। अल्लाह का रंग, और कौन है ज्यादा अच्छा अल्लाह से रंग में, और हम तो बस उसी की बंदगी करते हैं। अल्लाह ताला सब रंगों से हटाकर एक रंग देना चाहते हैं इंसानों को, और ये अल्लाह की मोहब्बत का रंग है। रंग और नस्ल के फ़र्क से मिट जाओ, अल्लाह से ताल्लुक़ का रंग है। सुन्नतों का रंग अपना लो, अमलों का रंग आ जाए, चलते फिरते कुरान बन जाओ, इबादत करने वाले बन जाओ, अपने हुलिये बदलो, अपनी ज़ाहर बदलो। तुम्हें देख के लगे कि तुम अल्लाह वाले लोग हैं, तुम्हारे चेहरों पे खुदा तरसी का रंग आ जाए। अल्लाह ताला एक ऐसा गिरोह बनाना चाहते हैं जो बाकी सारे रंगों से आज़ाद हो। अगर आयत को इसके मजमून के एतबार से देखें तो इसमें यहूद और नसारा की एक रस्म बपतिस्मा, जिसको बैप्टाइज करना कहते हैं, उसकी तरफ इशारा है। उन लोगों का एक रिवाज था कि बच्चे को पैदा होने के बाद जर्द रंग के पानी के अंदर गुसल देते थे, और उनका ख्याल है कि इस अमल से फिर वो बच्चा क्रिश्चियन हो जाता है। इसी तरह की कुछ रस्में यहूद में भी हो सकती हैं, और हर मज़हब वालों के कुछ ना कुछ रिचुअल्स होते हैं जो वो अपने दीन के नाम पे करते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने यहाँ मुसलमानों के बारे में एक रंग की बात की है, और उसको यहाँ सिबगा कहा गया। अरबी ज़ुबान में रंग के लिए दो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, एक है लौन, पीछे हम पढ़ चुके मा लौनुहा गाय के वाक्य में। तो लौन कहते हैं कुदरती रंग को, बिल्कुल नेचुरल कलर, जैसे हम सब के अपने स्किन कलर्स हैं, वो चढ़ाना नहीं पड़ता। लेकिन सिबगा कहते हैं वो रंग जो आर्टिफिशियली चढ़ाया जाता है, मसलन कपड़े रंगे जाते हैं, या अगर कोई किसी किस्म का रंग चढ़ाता है अपने ऊपर, ये मादी भी हो सकता है और मानवी भी हो सकता है। मसलन जैसे आपके कपड़े हैं सफ़ेद हैं, उसके ऊपर कोई दूसरा रंग चढ़ा लिया गया। और मानवी रंग क्या होता है, जैसे आदतों का और अखलाक का रंग है। इसी तरह सालन को भी सिबग कहते हैं अरबी में, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे रंग होते हैं ना, और ख़ास तौर पे पाकिस्तानी सालन। हाँ, कहीं उसका धब्बा पड़ जाए तो दाग उतरता ही कम है। हाँ, तो सब्बाख कहते हैं रंग रेस को, ललारी जिसको बोलते हैं, डायर को कहते हैं। अब यहाँ रंग की बात हुई, सवाल पैदा होता है कि ये कौन सा रंग है जो अल्लाह ताला इंसान पे चढ़ाता है। कुछ लोग सोचेंगे सब्ज़ रंग, क्योंकि रोज़े का मिंबर जो है वो सब्ज़ है, इसलिए जो दीनी चीज़ बनानी होती है उसको सब्ज़ रंग का बना देते हैं। एक खातून का मसला था बेचारी का, उन्होंने कहा कि मुझे कारपेट डालना है और मेरा दिल चाह रहा है, मुझे जो पसंद आ रहा है वो सब्ज़ रंग का है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि ये तो बेअदबी होगी कि सब्ज़ रंग का कारपेट लूँ। भाई क्यों? इसलिए कि वो रोज़े का जो मेंबर है वो सब्ज़ है। तो मैंने उन्हें कहा कि फिर सारा घास भी उतार दें, ये भी तो अल्लाह ने सब्ज़ रंग का कारपेट बिछाया हुआ है ना। कुछ लोगों ने स्याह रंग को मजहबी रंग बना लिया कि काबे का गिलाफ स्याह है। हर दौर में मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ रंग रखे, लेकिन इस्लाम का ताल्लुक किसी ज़ाहरी रंग से नहीं है। इससे रंग और नस्ल के फ़र्क भी मिट गए, गोरे और काले का फ़र्क, अरबी और अजमी का फ़र्क, और इसी तरह दूसरे लोगों के फ़र्क जो हैं वो नहीं, बल्कि इस्लाम के रंग से मुराद क्या है कि बंदे के दिल में जब ईमान आता है तो उसका रंग उसके चेहरे से दिखना चाहिए, उसके वजूद से, उसकी बातों से, और ये रंग चढ़ाना पड़ता है। आप तसव्वुर में करें किसी कपड़ा रंगने वाले को प्लेन सफ़ेद कपड़े पे रंगता है, रंग डालता है, पकाता है, भट्टी में डालता है, फिर बाज़ दफ़ा वो कपड़ा भी जल जाता है, या उसके जलने के डर होते हैं, ज़रा तेज़ रंग होता है, उसकी ज़रा सी कमी बेशी जो होती है रंग का फ़र्क कर देती है। फिर उसके पास एक सैंपल होता है जिससे वो हमेशा मैच करता है। इस सारी कैफियत को अगर आप अपने इस्लाम के साथ देखें तो हम चाहते हैं कि हमारे ऊपर इस्लाम का रंग आए। उसका मैचिंग कहाँ से लेना है? कुरान और सुन्नत से। अल्लाह के नबी सल्लम की ज़िंदगी, आपके सहाबा कराम के अमल, वो हमारे लिए एक मेयार है। फ़ैन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदव में इसी का तस्करा था। फिर उसके बाद देखिए कि रंग चढ़ाना पड़ता है, इसके लिए पकना पड़ता है। ये नहीं हो सकता कि आपके कि इस्लाम का रंग ऐसे ही आ जाए और हमें कोई तकलीफ़ ही ना हो। इंसान को भट्टियों में जाना पड़ेगा, इंसान को अपने ऊपर एक ख़ास रंग लाना पड़ेगा। ये नहीं कि हम कहें कि दिल में बहुत ईमान है, चेहरे पे नहीं है, कुछ नहीं होता। बस लोग सोचते हैं कि रंग से क्या होता है, कुछ नहीं होता जी, आपको क्या पता मंदिर से कितने नेक हैं। अक्सर सुनिए आपने ये बात। पहली बात है कि हमें तो वाकई किसी की कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए, ना हम लोगों को चेक करें कि ये अंदर से मोमिन है या ऊपर से नहीं है, या ऊपर से है या नहीं है, क्योंकि वो अल हसीब की ज़ात है, उसने अपने काम लिया हुआ है। लेकिन हमें अपने आप को चेक करना चाहिए कि क्या मेरे ऊपर इस्लाम का रंग है, और रंग चढ़ाना है तो कैसे चढ़ाना है। इसके लिए आप देखें कि आप कोई सब्ज़ी ख़रीदते हैं, कैसी लेते हैं? बाहर से उसका रंग देख के लेते हैं ना। रंग अच्छा ना हो या शक्ल से बासी दिखे तो वो सब्ज़ी आप लेंगे? तरबूज खरीदने चाहें और वो आपको खरबूजा दे दे, और आप कहें कि ये क्या, मुझे तो तरबूज चाहिए, इस पे तो तरबूज वाला रंग ही नहीं, तो वो कहें नहीं, इसके अंदर तरबूज वाला रंग है। मजाक है ना। सेहत होती है तो चेहरे से दिखती है कि इंसान सेहतमंद है, बीमारी अंदर होती है तो चेहरे से बीमारी दिखती है। इसी तरह अल्लाह की मोहब्बत तो इतनी बड़ी चीज़ है कि जब अंदर आती है तो फिर तो बंदा अपनी जगह पे कायम ही नहीं रह सकता, फिर उसको अपने आप को बदलना होता है, फिर वो अपने आप को हर उस रंग में रंगना चाहता है जिससे अल्लाह ताला खुश होता है। फिर इंसान की कोई तारीफ करे, तनकीद करे, इस गेटअप में तुम ऐसी लगती हो, इस हुलिये में तुम ऐसी लगती हो, होंगी भाई, लेकिन मैंने तो रंग उसको दिखाना है जिसके सामने मैंने कल क़यामत के दिन पहुंचना है। फिर पक्का रंग होता है तो उसके लिए मजबूती के लिए उसको पकाते हैं, कच्चे रंग फौरन चढ़ जाते हैं, फौरन उतर जाते हैं। इसी तरह कुछ लोग हैं उनके ऊपर रंग आते और जाते हैं। जब रमज़ान का महीना आता है तो इस्लाम का रंग आ जाता है, रमज़ान गया तो रंग उतर गया, उमरा या हज किया तो रंग चढ़ गया, थोड़े दिन गुजरे तो रंग उतर गया। इस्लाम का रंग इतना कच्चा रंग नहीं है कि पहली बारिश से धुल जाए। इसके लिए इंसान को अपने आप को अल्लाह के साथ जोड़ना होता है, और अल्लाह की ये किताब जो है जो इस रंग को पक्का करने में हमारी मदद करती है, तो हर एक अपने आप को चेक कर सकता है। इसी रंग में रंगेंगे तो कबूल होंगे। आप कभी किसी डायर को कोई कपड़ा दें और जो सैंपल था उससे मुख्तलिफ होता, आप छोड़ के आ जाते हैं, रिजेक्ट, छोड़ो मुझे नहीं चाहिए, तुम खुद रखो, ये वो नहीं है जो मैंने कहा था। क़यामत के दिन भी हमारे अमल चेक होंगे, हमारे पूरे अमाल मैच किए जाएंगे कुरान और सुन्नत से, और जो उससे एक्स्ट्रा होंगे वो सब बिदात के खाते में डाल के दूसरी तरफ कर दिए जाएंगे। और इसी वजह से फिर एक बंदा इस बात की ज़्यादा फिक्र करता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो कबूल हो रहा है कि नहीं। इससे ज़्यादा उसको फिक्र ये नहीं होती कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ, ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, बल्कि वो क्वालिटी का काम करता है, और उसके लिए अल्लाह की किताब इंसान की बेहतरीन मदद करती है। लेकिन वो लोग जिन्होंने अल्लाह के इस रंग की बजाय लोगों को कुछ और रंगों में उलझाना चाहा, उन्होंने लोगों को कुछ और मुश्किलात में डाल दिया, उन्होंने उनको मुख्तलिफ चीज़ें सिखाई, तो ऐसे तमाम लोगों को अल्लाह ताला फिर इन आयात में इस बात की दावत देते हैं कि अपने दिल से तासुबात को निकाल के, अपने दिलों को खाली करके, एक दफ़ा अपने आप को अल्लाह के इस कलाम के साथ जोड़ के देखो, फिर जो रंग तुम पे आएगा उस पे दुनिया भी रश्क करेगी और आखिरत में भी रश्क होगा। लेकिन लोग इस किताब से दूसरों को काटते हैं। आप सोचिए, कोई मुसलमान हो, 30, 40, 50 साल की उम्र का हो चुका हो, और उसने वो किताब अभी समझी ना हो जिसके मुताबिक कल क़यामत के दिन रिजल्ट निकलने हैं। यानी ये ऐसे ही है ना कि जैसे कोई तालिब इल्म है और उसने अभी तक किताब ही नहीं खरीदी, पास हो जाएगा अपने इम्तिहान में? किताब खोली भी और उसको रोज़ सुबह शाम चूम के बंद करके रख दे, उसको सब्ज़ रंग के गिलाफ में डाल दे, कस्में खाए, इम्तिहान में नंबर आएंगे? किताब खुलेगी, फिर पढ़ेगा, फिर सीखेगा, फिर उसके मुताबिक अमल करेगा तो वो कामयाब होगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें इसी रंग में रंगने की तौफीक दे अपने आप को, और फिर इस रास्ते की सारी रुकावटें अल्लाह ताला हमारी दूर कर दे। लेकिन कुछ लोग इस चीज़ को पसंद नहीं करते, उनके साथ कैसे डील करना है इसका तरीका आगे बताया जा रहा है। कुल, आप कह दीजिए, कौन? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अतुहाजूना ना फिल्ला, क्या तुम हमसे अल्लाह के बारे में झगड़ते हो, अल्लाह की निस्बत से झगड़ते हो? हालांकि वहुवा रब्बुना व रब्बुकुम, वो तो हमारा भी रब है और तुम्हारा भी रब है। वलना मालुना वलकुम मालुकुम, और हमारे लिए हमारे अमल हैं और तुम्हारे लिए तुम्हारे अमल हैं। व नहनु लहू मुखलिसून, और हम तो उसी के लिए मुखलिस हैं, हमने तो अपने अंदर इखलास पैदा कर लिया। यानी तुम दीन के नाम पे झगड़ते हो। जब एक इंसान अल्लाह के रंग में रंगना चाहता है ना अपने आप को, तो इर्द गिर्द वाले बेचैन हो जाते हैं, भाई तुम ना रंगे तो तुम्हें कौन कह रहा है? नहीं, खौफ ये आता है कि फिर हमें भी अपना बदलना पड़ेगा। इसीलिए अब देखते हैं कि दोस्तों में कोई एक दोस्त ज़रा दीन के करीब जाने लगते तो बाकी लेग पुलिंग शुरू कर देंगी। सोच के करना, देख लो, फिक्र की बात है, फिर बड़ी पाबंदी होती है। बस लोग नेकी की तरफ आने लगते हैं तो अपने घर वाले रोक लेते हैं, देख लो फिर खाना भी नहीं पकेगा, फिर तुम बहुत मसरूफ हो जाओगी, कोई बीमारियों की वजह पेश करेगा, फिर तुम बहुत बीमार हो जाती हो। यानी ऐसे लगता है जूं ही बंदा अल्लाह की तरफ आने लगता है झगड़े शुरू हो जाते हैं, लोग इनसिक्योर फील करते हैं, वो समझते हैं कि बस अब ये हम जैसे तो अच्छे थे, अब थोड़े से मुख्तलिफ हो गए तो अब हम इसमें मिसफिट हो जाएंगे। कैसे लोगों को कहो तुम अल्लाह के नाम में अल्लाह के दीन के बारे में झगड़ा करते हो, हालांकि हमारा और तुम्हारा रब वही है, जिसके पास हमने जाना है तुमने भी तो उधर जाना है, और हमारे अमल हमारे लिए, तुम्हारे अमल तुम्हारे लिए, यानी हम तुम्हारे कहने पे, तुम्हारे मजबूर करने पे अपने अमाल नहीं छोड़ेंगे। और नहनु लहू मुखलिसून, यहाँ इखलास की बात कर दी, और इखलास वो खूबसूरत चीज़ है कि जिसको सिर्फ बंदा और रब ही जानता है। एक बंदे के दिल में कितना इखलास है इसका अंदाज़ा उसके अमाल से लग सकता है, लेकिन उसकी असल कैफियत उस बंदे को पता है। बस उलमा कहते हैं कि इखलास एक ऐसी चीज़ है कि जिसका ना तो फरिश्तों को पता चलता है और ना शयातीन को, यानी शैतान भी किसी से को नहीं पहचान सकता कि ये जो अमल कर रहा है वो किस नीयत से कर रहा है, और फरिश्तों को भी नहीं पता, तो वो तो बस लिख देते हैं इसने ये काम किया है। और इखलास की असल जज़ा अल्लाह ताला देगा, और अल्लाह असल में हमें खालिस करना चाहता है। हम दुनिया में भी तो प्योर चीज़ें मांगते हैं ना, प्योरिटी चाहिए, तो कहा वो इखलास का रंग है। अम तकुलूना इन्ना इब्राहीम व इस्माईल व इसहाका व याकूब व अलअसबात कानू हूदन औ नसारा, ये क्या तुम कहते हो कि इब्राहीम और इस्माईल और इसहाक और याकूब और उनकी औलाद यहूदी थे या नसरानी थे? कुल अअन्तुम आलमु अमिल्ला, कहो क्या तुम ज़्यादा जानते हो या अल्लाह जानता है? कैसी बातें करते हो कि वो यहूदी थे या नसरानी थे, यानी मुराद है कि अल्लाह ताला तो कहता है कि वो नहीं, क्योंकि ये सारे मजाहब तो बाद में शुरू हुए, तुम झूठ बात कहते हो। वमन असलम मिम्मन कतम शहादतन इंदहु मिन अल्लाह, और उससे बड़ा जालिम कौन है जिसने गवाही छुपाई जो उसके पास थी अल्लाह की तरफ से। इसमें यहूद की तरफ भी इशारा है कि जिन्होंने किताब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खबरें जान के सुन के फिर भी नहीं माना। इसी तरह इसमें उन तमाम लोगों की बात है कि जो अल्लाह को एक दिल से तो मानते हैं लेकिन लोगों के प्रेशर की वजह से उसके ऊपर इजहार नहीं कर सकते। और ये वही शहादत है जिसको अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। इससे पता चलता है कि जब तक ईमान का इकरार ना किया जाए, अकेले में छुप के बैठ के कलमा पढ़ लिया ठीक है आप मुसलमान हो गए, लेकिन डिक्लेरेशन लाजिम है। बस लोग किसी नॉन मुस्लिम को बड़े अच्छे काम करते देखें फिर कहते हैं कि आपको क्या पता ये मुसलमान हो, भाई हमें तो नहीं पता, लेकिन इस्लाम का इजहार करना लाजिम है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे निकाह के वक्त इजहार ज़रूरी है ना, कोई अकेले में लड़का लड़की बैठ के निकाह कर लें और कह दिए निकाह हो गया, अब सोचिए जब कोई गैर उनको देखेगा तो कैसे समझेगा कि निकाह हुआ है, वो कहेंगे ये एक नामहरम लड़का लड़की इकट्ठे फिर रहे हैं। इसीलिए हुक्म है कि निकाह का ऐलान करो चाहे दफ बजा के करना पड़े। इसी तरह किसी का दिल में ईमान है और बिलफर्ज उसका इंतकाल हो गया, कौन है जो उसको कफन दफन देगा, उसको नहीं पता ये मुसलमान था। इसमें उन लोगों की तरफ इशारा है कि जो अपनी जाहिर को छुपा लेते हैं, बास लोग हालात के फितनों और बिगाड़ से डरते हुए अपनी इस्लाम की सारी निशानियां छुपा लेते हैं, कपड़े बदल लो, ड्रेस चेंज कर लो। गाड़ियों में लोगों ने कहा, जब एक वाक्य हुआ कुछ साल पहले तो मुझे किसने कहा कि अब तो लोगों ने अपनी गाड़ियों में छोटे छोटे कुरान रखे होते थे कि कहीं भी मौका मिलता है बच्चों को लेने जाते हैं खोल के पढ़ लेंगे, कुछ नहीं होगा, यानी काम आएगा और कुछ नहीं, तो कुछ लोग बरकत के लिए भी लटका लेते हैं। कहते हैं जब ये वाक्य हुआ फितना हुआ एक ऐसा, तो उन्होंने अपनी गाड़ियों से कुरान भी निकाल दिए कि किसी जगह से पता ना चल जाए कि ये किसी मुसलमान की गाड़ी है। तो आप सोचिए कि अगर ऐसे वक्त में कोई मर जाता है तो उसके साथ क्या होगा। इसीलिए कहा कि ये गवाही छुपाने की चीज़ नहीं है, इस्लाम तो बोलता है, सर चढ़ के बोलता है, इस्लाम तो इंसान के अंदर जुर्रत देता है। तो लिहाजा वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलून, अल्लाह इससे गाफिल नहीं है जो तुम करते हो, जो मर्जी करो शौक से करो, लोगों से छुप जाओगे कोई कुछ नहीं करेगा, लेकिन कल जब अल्लाह की अदालत में खड़े किए जाओगे तो तुम्हारे सारे अमल दिखेंगे। और आखिरी आयत पारे की, तिल का उम्मतुन, ये तो एक गिरोह था नबियों का, उनकी औलादों का, कद खलत, गुजर गया, मत उनकी निस्बतों पे उम्मीद रख के जन्नत की आस रखो, वो गुजर के। लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम, उनके लिए वही था जो उन्होंने कमाया और तुम्हारे लिए वही है जो तुम कमाओगे। कितने तरीके से आप बात कर रहे हैं, अब देखें दूसरी दफा ये आयत आ रही है ना, अल्लाह ताला ने खोल के बात कर दी कि किसी के अमल पे कोई मान न करना, وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور اللہ کے نبی کو آخر میں تسلی دے دی. یہ بہت تنگ کرتے ہیں نا آپ کو. آپ کو یہ غم ہے کہ یہ کیوں غلط چیزوں کی طرف جا رہے ہیں, لیکن فکر نہ کریں, کل آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ کیسے عمل کر رہے تھے. مراد کہے کہ ایک سچے دائی دین کا کام کیا کہ وہ لوگوں تک حق پہنچا دے, دعوت دے دے, کھول کے بتا دے, جو اس کو توفیق ہے اس طریقے سے بتا دے. اس کے بعد اگر کوئی نہیں مانتا تو پھر اس کا گناہ اس پہ نہیں. اسی طرح ایک استاد کا فرض ہے کہ وہ اچھے برے کا فرق اپنے طالب علموں کو بتا دے, سن لے, اس کے بعد نہیں مانیں گے تو استاد کو اس کی غلطی نہیں. اسی طرح ماں باپ, یعنی استاد کو اس کی سزا نہیں ملے گی. اسی طرح ماں باپ اگر ساری زندگی کوشش کرتے ہیں بچوں کو سدھارنے کی, ان کو سکھانے کی, دین کی, پھر بھی بات بدبخت ہوتے ہیں, نہیں مانتے, غلط طرف چل پڑتے ہیں. بعض ماں باپ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی انقلاب میں, بچپن سے ہم ان کو لے کے پھر رہے ہیں اور یہ اور وہ. حالانکہ اس میں بھی کئی چیزیں ہوتی ہیں جو ان بیچاروں تک کہ وہاں تک سوچ نہیں جاتی, لیکن بالفرض محال اگر کوئی پوری کوشش کرے اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی, سکھانے کی, اور پھر بھی بچے خراب ہو جائیں, تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ, تم سے سوال نہیں کیا جائے گا کہ وہ عمل کیا کرتے تھے. تو یہاں پہ ایک طرح سے پارہ کا اختتام اس طرح ہوا. انشاءاللہ ہم ان آیات کو تھوڑا سا ساتھ لے کے آگے بھی دیکھیں گے, اور اصل میں یہ پہلے پارے کی بنیاد پہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلا پارے کا جو پہلا رکوع شروع ہوگا اس میں بہت ساری چیزیں ہمیں ایک امت کے ناطے سے سکھائی جائیں گی. پورے پارے کو اگر ہم دیکھیں تو ہم نے ہدایت کی دعا مانگی, اللہ نے دعا قبول کی, کتاب کھل گئی, تینوں گروہ دکھا دیے. شروع میں حضرت آدم کے ذکر سے پہلا انسان بتا دیا, بنی اسرائیل کے طریقے سے پہلا الہامی مذہب بتا دیا, اور آخری دو رکوع میں حضرت ابراہیم کو پہلا امام بنا کے دکھا دیا. ہم سب کے سامنے ایک رول ماڈل رکھ دیا. اب آخر میں کہہ دیا اب جو کرنا کرو, جو تمہیں تم کرو گے وہ تم کو ملے گا, جو دوسرا کرے گا اس کو ملے گا. اللہ تعالیٰ سے بہت عاجزی کے ساتھ یہ دعا ہے کہ ہمیں جو بات ہم نے پڑھی اس کے اندر سے ہر اس بات پہ غور کرنے کی توفیق دے جو ہمارے اپنے عمل کے متعلق ہو, ہماری غلطیوں کی اصلاح فرمائے. اور ان سب ساتھیوں نے جتنا بھی پڑھا, جو بھی سنا, اس کو اللہ تعالیٰ قبول کرے. جنہوں نے بیچ میں چھوڑا یا مس کیا, اللہ تعالیٰ ان کو اس کو پورا کرنے کی توفیق دے, اور یہ قرآن پاک ہمارے ساتھ زندگی بھر چلتا رہے. الحمدللہ یہاں پہ پارا پورا ہوا, قرآن پاک کا سفر شروع کیا تھا. آپ میں سے بھی کچھ لوگ اس دن تھے, تو مقاصد جو لکھائے تھے کورس کے وہ یہی تھے کہ ہم نے قرآن کو پڑھ کے اپنی اصلاح کرنی ہے. تو اصل امتحان تو وہ ہے جو ہم خود اپنا لیتے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ مینج کرنے کے لیے اور جو چیزیں سیکھی جاتی ہیں اس کے لیے پھر پڑھنے کے بعد ہلکا پھلکا سا ٹیسٹ لیا جاتا ہے. اور اس میں بھی دیکھیں کئی ایسے ساتھی ہمارے ساتھ جو بیچارے لکھ بھی نہیں سکتے, لیکن اللہ کے پاس ان کا کتنا اجر ہے اور ہمارے دلوں میں ان کی کتنی قدر ہے یہ آپ لوگ نہیں اندازہ کر سکتے. تو اس لیے پہلی چیز تو یہی کروں گی کہ آپ میں سے جتنے ساتھی آج ہیں, اگر کسی وجہ سے یا مجبوری سے یا لا علمی کی وجہ سے آپ پہلا پارا نہیں کر سکے, تو میں آپ سب کو دعوت دوں گی. آج بھی آپ کے لیے دروازے ایسے ہی کھلے ہیں, بسم اللہ کریں, اپنے آپ کو اس میں رکھیں. آپ کہتے ہیں کبھی آئیں گے کبھی نہیں آئیں گے, تو کبھی بھی نہیں آتے. وہ ایک ایسی بات ہے, یہ جب تک ہکپ نہیں ہوتے آپ جڑتے نہیں ہیں. جو کسی جگہ بند ہیں الحمدللہ رجسٹریشن ٹیبل ہے, آپ انفارمیشن لے سکتے ہیں. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اس پورے پارے میں جو ہم نے پڑھا سنا اس پہ عمل کی توفیق دے, اور ہماری سوچ نہ بدلے, سوچ نہ بھٹکے. دیکھیے دین پڑھنے آئے ہوئے آپ لوگ بھی, آپ بھی اس چیز کے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ کوئی ہمیں ایسی بات کی طرف نہ لے جائے کہ جو ہمیں ہدایت سے گمراہی پہ لے جائے. کیونکہ دنیا کے رنگ میں جب انسان گمراہ ہوتے ہیں تو واقعی بہت گمراہ ہوتے ہیں, لیکن جو دین کے رنگ میں گمراہ ہوتے ہیں ان کا کوئی علاج نہیں. جو دنیا سے دور ہے نا, جس کو قرآن نہیں پڑھنا آتا, وہ روتے ہیں, فون کرتے ہیں, باجی ہمارا سبق سن لے, ہمیں قرآن نہیں آتا. ان کو گلٹ ہے, ان بیچاروں نے نہیں سیکھا, ان کو تکلیف ہے. لیکن جو سیکھ چکے ہوتے ہیں وہ نہیں پلٹتے. تو اللہ کرے کہ ہم بھی اپنے آپ کو ہمیشہ ہی اصلاح کے لیے تیار رکھیں. اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے, توفیق دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.